ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುಗೆ ಜೋರದಾರ ತಾಳಿಯಾ ಹಾಕಿ दस बज के दस मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज यूहन्ना 10 बाप उसकी 10 आयत पर गौर करेंगे, क्योंकि टाइम के तलक से बाइबल मुकद्दस हमें बहुत कुछ बयान करती है और जिस वक्त में जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस रूहानी जंग में हमें हर रोज खुदा के कलाम के आईना में अपने आप को देखने की जरूरत है कि मेरी रूह पर कौन सा धाग धब्बा है, मेरी रूहानी जिंदगी में कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी वो जंगली जड़ी बूटी है जो मेरी रूहानी जिंदगी में फल आने नहीं देती. इसलिए यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, चोर नहीं आता चुराने मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए यीशु मसीह ने कहा आया कि तुम सब जिंदगी पाओ और कसर से पाओ. आए हम खुदा के जू चुके और उसके कलाम को मांगेंगे और खुदा से कहेंगे कि आज का कलाम जब बीज बोया जाए तो वो ऐसी खाद हो, वो ऐसी तैयारी हो, वो ऐसा हल हमारी जिंदगियों में चले ताकि जो कुछ बेफल है, जो जंगली जंगली क्या है जी जहरीली बूटियां बातें सोच ख्याल रवैये तसव्वुर है वो यीशु मसीह अपने कलाम के हल से जब अपना हल चलाए, जब ना अपना बीज बोए, जब उसका रूह आपके दिलों पर काम करे तो उसका नाम इज्जत और जलाल पाए. हम दुआ करेंगे. हर एक जान अपने लिए खुदा का कलाम मांगना शुरू करे, हर एक आंख बंद हो जाए और हर एक जुबान खुल जाए. मैं आपकी तरफ देख रहा हूं इसलिए कोई भी जुबान बंद ना हो, खुदावन से उसका कलाम मांगना शुरू करें. अगर आज आप इस सुबह सोच रहे हैं कि ये कलाम मुझे सुनने की जरूरत नहीं, मैं बाइबल को जानता हूं, जानती हूं, पढ़ती हूं, इस आयत को सुना है, तो ये सबसे बड़ी गलती है और इब्लीस ने इस जंगली सोच को, इस जहरीले सच को जो उसकी तरफ से सच और मसीह के ख्याल से झूठ है आपकी जिंदगी में बोया है, अपने आप को खाकसार बनाए. खुदावन खुदा तेरे हुजूर आता हूं, तेरा शुक्र करता हूं आज का कलाम मेरे लिए हो. आज का कलाम एक एक बेटे बेटी बुजुर्ग बच्चे नौजवान और बेटे बेटियों के लिए हो. आज का कलाम डीकनों के लिए हो. आज का कलाम पासबानों के लिए हो. आज का कलाम एल्डरों के लिए हो. आज का कलाम पुरस्कारों के लिए हो. आज का कलाम खुदा खुदा एक एक जिंदगी के लिए हो और कोई भी जिंदगी यहां से खाली ना जाए, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए. ये सब कुछ मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में. आमीन आमीन. यूहन्ना 10 बाब को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह वो चरवाहा है जिसने अपनी खिदमत को ईमानदारी से किया. यूहन्ना 10 के मुताबिक हम देखते हैं यीशु मसीह वो निगाहबान है जिसने रात दिन जाकर अपने बाप की मर्जी को पूरा किया. यीशु मसीह वो नौकर है जिसने अपने भेजने वाले की मर्जी को हर कीमत में क्या किया है जी, पूरा किया है. इसलिए यीशु मसीह जानता है रूहानी जिंदगी के बारे में, रूहानी फल के बारे में, जिस्मानी बातों के बारे में जो उसको सामना थी कि हमारी जिंदगी में क्या बनती है जी, रुकावट बनती है, जहरीली सोचें ख्याल तसव्वुर क्या करते हैं जी, हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद करते हैं. इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, सब मिलकर कहेंगे, चोर नहीं आता मगर चुराने और माल डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसर से पाओ. यहां पर जब हम देखते हैं तो इस सच से हमें आज जो सीखने को मिलेगा, हम सीखेंगे बेसमर बेफल या बांच रूहानी जिंदगी. बांच किसे कहते हैं बाइबल मुकद्दस में, वो जिसके औलाद नहीं है, जो फलदार नहीं है, जो पैदा नहीं कर सकती या कर सकता. बांच का लफ्ज खानम के लिए भी बीवी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्टरी लिहाज से, और रूहानी तौर पर औरत के लिए भी मर्द के लिए भी जिनसे औलाद पैदा नहीं हो सकती उनको क्या कहते हैं जी, भांज कहते हैं। सो आज हम रूहानी बेसमरी के बारे में, बेफली के बारे में सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है। हम देखेंगे कि बेसमर, बेफल, भांज या फलदार, जखीरादार या बासमर कसरत की मसीही जिंदगी में क्या फर्क है। दोनों जिंदगियां हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। इंसान होते हुए हम दो तरह की जिंदगी बसर करते हैं, एक आम रोजमर्रा की जिंदगी और एक वो जिंदगी जो आसमानी जिंदगी है, रूहानी जिंदगी है, पुरफजल जिंदगी है, पुरतसीर जिंदगी है, बाबरकत जिंदगी है, और जिसे क्या है जी फल पैदा होता है उसे फलदार जिंदगी कहते हैं, और या फिर हम बेफल जिंदगी बसर करते हैं। बेफल जिंदगी कैसी नजर आती है बाइबल मुकद्दस में, इसमें बहुत से हमें इसके हवाला जात मिलते हैं। इसलिए बेफल जिंदगी को जब हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे तो हमें जरूर देखना होगा खुदा के कलाम के बड़े आईने में कि मैं इस आईने में कहां पर नजर आता हूं, आती हूं। क्योंकि दो तरह की जिंदगी हम जमीन पर जिएंगे, फलदार रूहानी जिंदगी या बेफल या जिस्मानी जिंदगी। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं आधे घंटे के लिए रूहानी और आधे घंटे के लिए जिस्मानी, और या एक वक्त में मैं जिस्मानी भी और रूहानी हूं, नहीं। या तो हम रूहानी जिंदगी बसर करेंगे या फिर जिस्मानी, और ये सारा कुछ किस बात पर क्या है जी खड़ा है, हमारे एक फैसले पर, हमारे एक सादा फैसले पर कि हम रूहानियत में जंप लगाकर कहेंगे कि मैं यहां पर खड़ा हूं, कायम रहूंगा। और जैसे एल्डर क्रिस ने कहा, किस में हम जीतेंगे, खुदावंद के जोर में। जब हम खुदावंद के जोर में आएंगे तो क्या होगा जी, खुदावंद के जोर में रहेंगे। आपने अचानक या सुना होगा रेसलिंग को, रेसलिंग देखिए जिसे कुश्ती कहते हैं जी, कुश्ती को जब देखते हैं तो कुश्ती दो तरह की होती है, यानी कि अकेले अकेले या दो दो की टीम जब लड़ती है। तो दो दो की जब टीम लड़ती है तो क्या होता है, जब एक खिलाड़ी उस कुश्ती के मैदान में उतरा हुआ है और दूसरा उसका जो दुश्मन है वो क्या रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, और जैसे उसे पता चलता है कि वो मुझ पर गालिब आ रहा है, तो आपने रेसलिंग में देखा होगा कि वो भागकर उस कोने की तरफ जाता है ताकि क्या करे जी, अपने साथी से हाथ मिला ले। जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है उसे कहते हैं इंग्लिश में टैप इन, टैप इन। जैसे ही वो हाथ मिलाता है ताली की आवाज आती है, वो दुश्मन क्या करता है उसे छोड़ता है और दूसरा अंदर आकर उसके साथ क्या करना कर देता है जी, कुश्ती शुरू कर देता है। हमारी रूहानी जिंदगी भी ऐसी ही है, जब हम अपनी जात में खुद लड़ाई लड़ते रहेंगे और इबलीस हमें मारना, शर्मिंदा, हलाक करना, तबाह बर्बाद करना चाहता है और हमारी जिंदगी को खत्म करना चाहता है, अगर हम भाग कर उस कोने में खुदा के पाखरू को कहेंगे हाथ मिला और खुदा का रूह आता है और हमारे दुश्मन को क्या करता है, वो पस्त करता है, पटकता है, और हम क्या हो जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। और इसका क्या मतलब है, खुदावंद के जोर में मजबूत बनना, और जब वो आता है हमारे लिए, हमारी तरफ से लड़ने के लिए, तो अबलीस उसकी बदरूहें, उसकी तमाम बुरी सोचें, ख्याल, हर रवैये क्या होते हैं जी, भागना शुरू हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। हमें अपनी रूहानी जिंदगी में रूह कुदस को कहने की जरूरत है, अमर जरा इधर आओ, तो क्या कहने की जरूरत है, मैं लड़ रहा हूं, रूहानी जंग लड़ रहा हूं, अपने जोर में लड़ रहा हूं, अपने रवैये में लड़ रहा हूं, मुझे हारमोनियम बजाने आता है, मुझे बाइबल पढ़ने आती है, मैं चर्च का डीकन हूं, मैं चर्च का एल्डर हूं, मैं चर्च का ये हूं वो हूं, मैं प्रस्तुति बहुत अच्छी करती हूं, मैं तलावत कर लेती हूं, मैं दुआ करती हूं, और मैं ये सारा कर रहा हूं। और अबलीस मुझ पर जब गालिब आता है, अगर मैं अपने आप में लड़ता रहूंगा तो वो अबलीस मुझे तबाह बर्बाद कर देगा। मुझे क्या करना होगा, कहना होगा रूह कुदस आएगा, रूह कुदस क्या करेगा, मेरे लिए लड़ना शुरू कर देगा। हमें खुदावंद के जोर में खड़ा होना, लड़ना सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लड़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखेंगे फलदार जरखेज जिंदगी और बेफल और क्या है जी, बेफली जिंदगी जिसमें कोई फल नहीं लगता। सो जो बाइबल मुकद्दस लेकर आए मेरे साथ निकाले आज की सुबह जबूर की किताब उसका पहला जबूर उसकी पहली तीन आयात में हम देखेंगे कि फलदार जरखेर और जरखेज और बासमर, बासमर ये क्या है जी, वो फल से भरपूर जिंदगी जिसे क्या कहते हैं हम, दाऊद की जुबानी देखेंगे कि दाऊद इसे क्या कहता है। जबूर एक को जब हम देखते हैं तो जबूर एक उसकी पहली आयत से लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्टेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनूदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियां के पास लगाया गया है और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, जो कुछ जो कुछ वो करेगा बराबर होगा। यह है फलदार जिंदगी की क्या है जी, तस्वीर। और फलदार होने के लिए तीन हुक्म दिए गए हैं और ये तीन हुक्म क्या है, पहला हुक्म शरीरों की सलाह पर ना चलो। शरीर नहीं चाहता, चोर नहीं चाहता, अबलीस नहीं चाहता कि आपको वो दुरुस्त हदायत करे। वो खुद नाफरमान है और नाफरमान क्या सिखाते हैं, नाफरमानी करना। झूठ बोलने वाले के साथ बैठेंगे तो क्या सिखाएगा आपको, झूठ बोलना। चुगली करने वाले के पास बैठेंगे तो क्या सिखाएगा आपको, चुगली करना। इधर देखो मेरी तरफ भाई, मेरी तरफ देखो। शरीर की सलाह पर ना चले, शरीर क्या आएगा आपके कानों में फूकेगा कि शरारत करो। शरीर क्या करेगा, आपका भला नहीं चाहता। सो पहला हुक्म क्या है, शरीर की शरारत पर क्या ना करें जी, अमल ना करें, उसकी सलाह पर ना चले। शरीर आपको सलाह देगा हर वो बात की जो खुदा के क्या है जी, खिलाफ है। इसलिए शरारत को हमें जानने की जरूरत है कि शरारत है क्या। हर वो बात जो खुदा की मुखालफत और आपकी जात में जब आपको कोई कह रहा हो, नहीं फलादा सुनिया, नहीं टमकादा सुनिया, नहीं उसका ये है उसका वो है और उसके बारे में चुगलियां जब सुनते हैं तो उसी वक्त कहें बहन अपनी जुबान को ताला लगा लो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मेरे मुंह पर निगाहबान बिठाता कि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। सो शरीर की सलाह पर ना चले पहली बात। और शरीर कैसे आएगा, उसके दो सींग नहीं होंगे, वो उसकी बड़ी पूंछ नहीं होगी, वो हाथ में क्या है जी, को डंडा लेकर तो शरूर लेकर नहीं आएगा, वो बरूपिया बन के नहीं आएगा, बल्कि वो क्या होगा, हमदर्द बनकर आएगा। हो सकता है कोई मसीही भाई हो, बहन हो। शरीर अगर शरीर के रूप में आए तो हमें पता चल जाएगा, चल जाएगा ना जी। अगर भेड़िया भेड़ के रूप में आएगा तो उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर भेड़िया भेड़ के रूप में आएगा तो पता चल जाएगा। शरीर को हम कैसे पहचानेंगे, उसके कामों से। और बहुत दफा वो शरारत किनसे करवाता है, यीशु मसीह के बेटे और बेटियों से, इसलिए उसकी सलाह पर नहीं चलना। दूसरा हुक्म क्या है जी, शरारत पर नहीं चलना, शरीर की सलाह पर नहीं चलना और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना। अगर आप जानते हैं किसी को कि वो बंदा उसकी जिंदगी का तरीका कार, बेटा सुनो मेरी तरफ, मेरी तरफ, शरीर को मौका ना दें, खताकार की राह में खड़े ना हो। अगर वो आपको कहे कि आओ कुछ करने को चले जो क्या है जी मुनाफे की बात है और किसी का नुकसान होगा, उस खताकार के साथ खड़े होना मुनासब नहीं है। अगर खड़े होना है तो खुदावंद के जोर में खड़े होना है, अगर खड़े होना है तो ईमान में खड़े होना है, अगर खड़े होना है तो रासबाजी में खड़े होना है, खताकारों की राह में खड़े नहीं होना। अगर आपको पता है कि यह रास्ता बुरी राह की तरफ जाता है तो उस रास्ते पर मत खड़े हो। साहिबर में मजदूर पुली है, उस मजदूर पुली का सबको पता है कि वहां पर मजदूर मिलते हैं और साथ ही में एक गंदा मोहल्ला भी है। उस गंदे मोहल्ले को क्या कहते हैं, कंजर मोहल्ला कहते हैं। उस मोहल्ले का सबको पता है कि वहां पर बदी होती है और जो कोई उस राह पर जाकर खड़ा होगा वो क्या करेगा, बदी करेगा, और जो मजदूर पुली पर खड़ा होगा वो मजदूरी के लिए खड़ा है। और पता चल जाता है ये मजदूर लोगों की जगह है जो अपने माँ बाप बहन भाई बच्चों का पेट पालने के लिए खड़े हैं। और हम भी जानते हैं कि कौन सा रास्ता किधर को जाता है, हम सबको खुदा ने आंखें दी हैं, इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है अपनी जुबानी खताकारों की राह में खड़े नहीं होना और ठट्ठे बाजू की मजलिस में नहीं बैठना। मजलिस का मतलब यानी कि मजमा, जहां पर बैठते हैं इकट्ठे होकर। ठट्ठे बाज कौन है? वो जो मजाक उड़ाते हैं। वो मजाक खुदा की जात का हो सकता है, वो मजाक किसी के चेहरे पर हो सकता है, किसी की आंखों पर हो सकता है, किसी के मुंह पर हो सकता है, किसी के चलने बैठने उठने या उसकी जिस्मानी हालत पर हो सकता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि उनके साथ मत बैठो, उनके साथ मत बैठो, क्योंकि अगर ये तुम तीन बातों को करोगे तो क्या होगे जी, फलदार होगे। कौन कौन सी है? अबलीस और शरीर की राह पर नहीं चलना, खताकारों के रास्ते में खड़े नहीं होना, और क्या है जी, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। रहने दे जी, शुक्रिया, आप लगा लें। बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी क्या है जी, खुशनूदी है। खुदावंद की शरीयत में खुशनूदी है, उसका दिल, उसकी जान, उसका उठना बैठना चलना किसमें है जी, खुदावंद की खुशनूदी में है, और उसी पर दिन रात उसका ध्यान रहता है, ध्यान रहता है। यह है फलदार जिंदगी की तस्वीर, क्योंकि जब वो ऐसे तीन हुक्मों पर अमल करेगा, अपने बैठने को, अपने खड़े होने को, अपने चलने को, हमें पहचानने की जरूरत है, इसलिए हमें जांचने की जरूरत है कि हम किन को दोस्त बनाते हैं, किन को सहेली बनाते हैं। अगर चोरों के साथ वास्ता रखेंगे तो फिर चोर कहलाएंगे, अगर रास्तबाजों के साथ बैठेंगे तो रास्तबाज कहलाएंगे, अगर चुगती और ठट्ठेबाजों के पास या चुगलखोरों के साथ बैठेंगे तो वो कहेंगे ये भी चुगलखोर है और उसके साथ बैठने वाला भी चुगलखोर है। इसलिए खुदावंद की शरीयत में क्या करना है जी, हमें दिन रात, तो उसका मतलब क्या बनता है, किसके साथ बैठना चाहिए, यीशु मसीह के साथ, किसके साथ खड़ा होना चाहिए, यीशु मसीह के साथ, किसी के साथ चलना चाहिए, यीशु मसीह के साथ, तब ही हम रूहानी जिंदगी अगर खुद लड़ेंगे तो अबलीस हमें पीस डालेगा, मार डालेगा, फना कर देगा, हम दिखावे के तो क्या है जी, पौधे नजर आएंगे और हम में फल नजर नहीं आएगा। और रूह कुदस वहां पर खड़ा क्या कर रहा है जी, इंतजार कर रहा है कि मुझे हाथ दो, मुझे मौका दो, मेरी ताकत पर यकीन करो, मुझे इस मैदान में उतरने तो दो, मैं तुम्हारे अबलीस मुकाबले में जो खड़ा है उसको खुद क्या करूंगा, शिकस्त दूंगा। लेकिन बहुत दफा मसीही लोग क्या बन जाते हैं, ढीठ बन जाते हैं, ढीठ। वो कहते हैं खुदा को ना, रूह कुदस को ना, खुदा के कलाम को ना, खुदा के बंदों को ना, यीशु मसीह को ना, हर एक को ना, और फिर वो क्या होते हैं जी, बेफल रह जाते हैं। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, जब हम बेफल जिंदगी को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस चौथी आयत से छठी आयत में हमें क्या कहती है, जब हम जबूर को पढ़ते हैं, पहला जबूर उसकी तीन, चौथी और पांचवी और छठी आयत को देखते हैं, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसी की मानद है। भूसी किन कहते हैं, तूड़ी। जब हल चलाया जाता है, इकट्ठी की जाती है कनक, तो क्या होता है, चलता ना जी हमारा थ्रेशर। हमारी जमीन हो ना हो, हमारे घर में कनक के मकई के दाने आए ना आए, लेकिन उसका भूसा लाजमी आ जाता है, क्योंकि हवा उसे उड़ा ले जाती है। अगर उस थल में या किसी और किले में मशीन लगी है और हवा हमारी तरफ है, तो क्या है जी, जितनी तूड़ी जितना खेस हवा क्या होता है जी, हमारे घरों में आ जाता है। ठीक जैसे शाम को छोने वाली फैक्ट्री जब चावल बनाती है तो उसकी सारी कालक क्या है जी, आपकी छतों पर आपके घरों में जाती है, क्योंकि हवा जिधर को चलती है उधर को उसे ले जाती है। खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, बेफल बेफल बांच या बेअसर जिंदगी के बारे में वो क्या कहता है। शरीर ऐसा नहीं बल्कि वो भूसी की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, यानी कि वो अदालत में खड़े नहीं हो सकेंगे, और उसके बाद साधकों की जमात में वो क्या है जी, बैठ नहीं सकेंगे, और खुदावन खुदा की राह पर वो चले नहींगे और उसमें वो खड़े नहीं होंगे। वो तीन बातें जो कहता है कि साधक करेंगे, साधकों के लिए क्या होगा, वो चलेंगे, वो खड़े होंगे और वो बैठेंगे, और यहां पर वो कहता है कि शरीर ना कायम रहेगा, ना के खड़ा रह सकेगा, ना बैठ सकेगा, और ना ही उसका नामो निशान रहेगा। इसलिए हमें इस तरह की तर्ज हयात यानी कि जिंदगी के तरीके को क्या है जी, जांचना है, परखना है कि कौन सी ऐसी सोच, कौन सा ऐसा ख्याल, कौन सा ऐसा रवैया है जो हमारी जिंदगियों में कीड़े की तरह। जब मकई का सीजन आता है तो मशहूरी आती है जी, अपनी कणक में बचाव लई साढ़े नाल वादा करो ते ताड़े लई ए बोतल इन लोगे ते एक बोतल दे नाल ताड़े पांच किलियां दी सूंडी ते तेला ते कीड़ा ते फलां ते टमका खत्म हो जाएगा, साढ़े ते यकीन करो, ये समाई हुई गल आ। ते तीन चार चौधरी आके कहते हां जी भाजी असं भी सुनिया सी, सानू कहा गया कि ताड़े एक किले च जे ऐ चिट्टी दुआले की दवाई की जाएगी ते एदे नाल तमाम कीड़े ते तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। यीशु मसीह क्या कहता है, तुम्हारी रूहानी फसल को ठीक करने का एक ही हल है और वो क्या है, रूह कुदस की सदाकत में जिंदगी बसर करना, बीमारी को खत्म करने के लिए जैसे मकई की बीमारी के लिए दवाई है, वैसे हमारी रूहानी मुर्दगी और बेफली को खत्म करने का एक ही हल है और वो है खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह की ताबेदारी। क्योंकि जब हम ताबेदारी करेंगे तो हम कैसे होंगे, उस दरख्त की मानद होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता और जो कुछ वो करता है बराबर होता है। इन तीन बातों को फिर तीन बातों से देखते हैं, वो खड़ा नहीं होता, वो चलता नहीं है, वो बैठता नहीं है, और जो यीशु पर भरोसा रखता है वो किस दरख्त की मानद होगा, वो जब लगाया जाएगा अपने वक्त पर फलेगा, यानी कि उसकी जड़ें मजबूत है, वो कायम रहेगा, और दूसरी बात क्या है जी, उसका पत्ता नहीं मुरझाएगा, यानी कि वो फलावर होगा, और जो कुछ वो करेगा वो क्या होगा, दूसरों के लिए बरकत का बायस होगा, और जब फल आएगा तो खाने वाला कहेगा सबान तेरी कुदरत जिसने ये दरख्त बनाया। हमें वो रूह कुदस में दरख्त बनने की जरूरत है जिसके लिए खुदा का बंदा यर्मिया कहता है। मेरे साथ एक और तस्वीर देखें, यर्मिया नबी इस बात के बारे में कहता है कि फलदार दरख्त कैसा नजर आता है, फलदार ईमानदार कैसा नजर आता है, फलदार ईमानदार की वो मिसाल देते हुए कहता है यर्मिया उसका 17 बाप उसकी 5 और 6 आयत को जब हम देखते हैं, यर्मिया 17 बाप उसकी 5 और 6 आयत को देखते हैं तो खुदावंद का कलाम यर्मिया को यूं कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है, सॉरी 7 और 8 आयत को देखेंगे, पहले क्या लिखा है, मुबारक है वो आदमी, जैसे जबूर शुरू होता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, तो यर्मिया 17:7-8 को पढ़ते हैं तो लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, जिसकी अमीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो बल्कि उसके पत्ते हरे रहें, और खुश्क साली यानी कि जब अकाल आएगा, जब भूख आएगी, जब अनाज नहीं होगा, जब जमीन पर पानी नहीं होगा, जब क्या हो गया जी, सूखे का मौसम आएगा। ये मौसम हम देखते हैं कि एलिया के दौर में तीन साल तक ना बारिश हुई ना क्या हुआ कोई पैदावार हुई। सात साल तक जब हम मिस्र में देखते हैं यूसुफ ने नबूवत की थी, सात साल तक क्या था जी, अकाल पड़ा, कुछ पैदावार नहीं हुई, जानवरों ने मरना भूखे शुरू कर दिया। और यहां पर खुदा का बंदा यर्मिया कहता है जब इर्द गिर्द मौत होगी, जब इर्द गिर्द बियाबान की जिंदगी होगी, जब इर्द गिर्द तमाम भूखे होंगे, जब इर्द गिर्द किसी को समझ नहीं आएगी, जब इर्द गिर्द किसी को हिकमत और दनाई की बात के फहम नहीं होगा, तो तुम्हारा खुदावन खुदा क्या करेगा, तुम्हें क्या करेगा, हरा भरा रखेगा। तमाम मुल्क जब भूखा होगा तो खुदावन खुदा क्या करता है, एक मुट्ठी आटा और थोड़े से तेल से क्या करता है, एलिया को शेर करता है। वही खुदा बियाबान में जब सारा मुल्क भूखा प्यासा और क्या है जी बंजर जमीन की मानद है, खुदावन कईयों को हुक्म देता है तो वो उसके लिए कट्टे की कढ़ाई बनाकर क्या है जी लेकर आते हैं, उसके लिए खुदावन खुदा के हजूर से गोश्त लेकर आते हैं कि वो क्या करे जी एलिया को खिलाए और शेर करे ताकि वो हरा भरा रहे। यर्मिया कहता है जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना होगा बल्कि उसके पत्ते हरे रहेंगे और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना होगा, वो फल लाने से बाज नहीं आएगा। और ये किन के लिए होगा, जो शरीरों की शराब पर नहीं चलेगा, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठेगा, जो खताकारों को क्या नहीं करेगा जी अपना दोस्त नहीं बनाएगा, ये उनके लिए वादा है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में फलदार जिंदगी को, हमने देखा कि फलदार जिंदगी कैसी नजर आती है, बेफल जिंदगी के बारे में कहा गया है वो ना खड़े रहेंगे ना कायम होंगे और ना ही वो क्या करेंगे जी अपने रास्ते से जिस राह पर जाते हैं उस पर चलेंगे। उनका चलना क्या होगा जी, दुरुस्त नहीं होगा। उनका कायम होना दुरुस्त नहीं होगा। उनका खड़ा होना क्या है जी, माकूफ हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। और बेफल दरख्त के बारे में क्या कहता है यर्मिया 17 बाप उसकी 5 और 6 आयत को, वो कहता है खुदावंद यूं फरमाता है मालाउन यानी कि लानती है वो बंदा। खुदावंद खुदा क्या करता है, ऐसे तरीके पर, ऐसे अकीदे पर, ऐसी सोच पर क्या करता है, लानत करता है। और खुदावंद बरकत तो बहुत चाहता है लेकिन जब वो लानत करता है तो उसकी लानत को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें उसकी लानत से बचना चाहिए कि कहीं हम ऐसे ना हो कि हम पर लानत हो जाए। वो रहम करने में क्या है जी, गनी है। कहर करने में क्या है जी, धीमा है। वो कहर करता है तो एक पल में करता है और अगर रहम करता है तो पुश्तों के लिए करता है। इसलिए उसकी सदाकत, उसकी मोहब्बत क्या ही आला है। सो यर्मिया कहता है खुदावंद यूं फरमाता है मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है। इंसान पर तवक्कल करने से मुराद यानी कि खुदा पर भरोसा नहीं करना, खुदा को अपना बाजू नहीं जानना, खुदा पर अपना यकीन नहीं रखना, वो क्या है खुदावंद की नजर में लानती है। और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावन से बरगश्ता हो जाता है। जो बंदा बरगश्ता हो जाता है वो खुदावन की बजाय किस पर भरोसा करता है, दुनिया दुनिया के रुपए पैसे, अपने यारों पर, अपने कारोबार पर और अपनी क्या है जी उस कठी हुई पूंजी पर कि मुझे खुदा की जरूरत नहीं। खुदावन खुदा से क्या कहता है, बरगश्ता। बरगश्ता किसे कहते हैं, जो भटक गया हो, जो रास्ता ना जानता हो, जिसे समझ ना आए, जिसे पता नहीं कि कहां पर बैठना है, कहां पर खड़े होना है और किस राह पर जाना है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि वो रत्मा की मानद होगा जो बियाबान में है, वो ऐसे पौधे की मानद होगा जो बियाबान में है, कभी भलाई ना देखेगा बल्कि बियाबान की बेऐब जगहों, बेआब जगों की मानद होगा, बे आप से मुराद यानी कि उनमें जिंदगी नहीं पाई जाएगी, उसमें फल नहीं पाया जाएगा, उसमें किसी किस्म की हरियाली नहीं पाई जाएगी, वो गैर आबाद जमीन वाय जमीन शोर में रहेगा। ऐसी जमीन पर उसका उठना बैठना होगा जहां पर क्या है जी, खुशहाली नहीं, बरकत नहीं, तसल्ली नहीं, इत्मीनान नहीं, खुशहाली के साथ साथ वो तमाम क्या है जी बरकत उसने खुद रोक ली है, क्योंकि वो बरकत की जगह पर नहीं बल्कि क्या है जी, सजा की जगह पर है। सो ये दो तरीके हमें बाइबल मुकद्दस में बयान किए गए हैं, फलदार जिंदगी और बेफल जिंदगी। और इस जिंदगी को जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, बहुत से लोगों ने गुजारा, बहुत से लोगों ने गुजारा इस बेफल जिंदगी को, और उस जिंदगी से क्या हुआ है जी, खुदावंद खुश नहीं हुआ। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आज भी जब से वो आसमान पर गया है, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, उसी यक वक्त में वो यहां पर भी मौजूद है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है जी, हर जगह पर हाजिर और नाजर है। उसे क्या कहा जाता है, आमनी प्रेजेंट कहा जाता है, यानी कि वो हर वक्त हर जगह दुनिया के हर कोने में मौजूद है। और वो जब नजर करता है कि मैं ढूंढूंगा फल को, तो वो तलाश करता है उस फल की। और वो फल क्या है, रूह का फल, कि इस बंदे ने, इस बंदे ने, इस बंदी ने रूह को अपना हाथ दिया है कि वो उसके साथ क्या करे जी, मिलकर। आज बहुत से मसीही अकेले ही मसीही जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो कहते हैं ना मुझे कोई बताने वाला हो, ना कोई मुझे सिखाने वाला हो, ना कोई मेरी रहनुमाई करने वाला हो, अगर कोई हो तो वो हो जो मुझसे सिर्फ मेरे फायदे की बातें करे, मुझे मलामत ना करे, मुझे सिखाए ना, मुझे रूहानियत के बारे में ना बताए, मुझे ये ना कहे कि तुम गलत हो, मुझे ये ना कहे कि तुम्हें दुरुस्त चलने की जरूरत है, अगर कुछ कहे तो मेरी सिर्फ क्या करे जी, वाह वाह करे, हां जी तुसी बड़े चंगे हो, हां जी तुसी बड़े चंगे हो, हाँ जी तुसी 2000 दा दिया गया सी, शुक्रिया तुसी दे दिता, खुदा तुहानू बरकत दे, हुण तुहाडे लई वड्डी कुर्सी मौजूद आ। और अगर याद दिलाया जाए कि तुमने वादा किया था कि मैं खुदा के घर में ये दूंगा, ओए मैं भुल गया, मैं अपनी वोटी दियां टुंबा लिया दियां खुदा नूं देण दी बजाय, मेकअप जरूरी सी, खुदा रुसदा दे रुस जाए ते मुन्ने दी अम्मी ना रुसे, वो मैंने खुदा के घर में ये देना था, सबके सामने कहा था ये दूंगा वो दूंगा। और पादरी साहब ने पूछा नहीं, वो चंगा पादरी साहब भूल गए, पादरी साहब नहीं भूले और ना ही खुदा भूला है। खुदा हमारी मन्नतों, हमारे रुपए पैसे को अगर हम उसे कुछ देना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, खुशी से देते हैं। इसलिए जब हम खुशी से देते हैं तो यह क्या है जी, फलदार जिंदगी की क्या है जी, एक पहचान है। और बहुत दफा जब हम अपने वादे करके, क्योंकि खुदा वादों से नहीं मुड़ता, जब हम अपने वादे करके फिरते हैं तो फिर हम खुद अपनी जिंदगी में क्या है जी, बेफली को लेकर आते हैं, हमारा फल नहीं पकता, हमारी तरक्की नहीं होती, सारी तनख्वाह होती अब पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं केड़ा सुराख बना, खुदा ने कहा कि मैं सुराख बना दूंगा। इसलिए खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि जब नए अहदनामा में हम देखते हैं यहूदियों में खुदा फल ढूंढने को आया, आपके साथ 3 तस्वीरों को शेयर करूंगा, फिल्म प्रोजेक्टर कल तो लग जाएगा खुदा के फजल से, आज ही लग जाएगा, लेकिन पहली तस्वीर बागे अदन में। बागे अदन में कैसी जिंदगी थी, खुशहाल थी, बाबरकत थी, हर तरह की फरावानी थी, हर तरह की पैदावार थी, हर वो फल था जो आज तक हम में से किसी ने नहीं खाया, आदम ने चखा, आज तक वो हजूरी का बादल जिसका हमने थोड़ा सा तजुर्बा किया है, हवा और आदम ने खुदा के रूबरू उसका क्या कजा जी, मजा चखा। लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने नाफरमानी की, नाफरमानी के गुनाह में गिरे, और क्या हुआ जब नंगे पाए जाए, जब शर्मिंदा हुए, जब वो खुदा की नजर में नहीं बल्कि अपनी ही नजर में मुजरिम ठहरे, तो क्या हुआ, वो कहां पर छुपे हुए थे जी, अंजीर के पत्तों के पीछे क्या है जी, उन्होंने अपने आप को छुपाया अंजीर के पत्तों में। سو خدا پہلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کی زندگی کو ڈھونڈنے ان کو دیکھنے آتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، ان کا روحانی معیار، ان کی روحانی زندگی میں جو برکات ہے وہ کہاں پر ہے. جب ان کو تلاش کرنے آئے تو وہ کہاں پر تھے جی؟ انجیر کے پتوں میں. نئے عہدناموں میں جب ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم کے درمیان خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور انجیر کے بے پھل ثمر اور بے پھل درخت کی تمثیل دیتے ہوئے کہ اس بے پھل زندگی کو یسوع مسیح نے جب دیکھا تو کیا ہوا؟ میرے ساتھ نکالے نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 13 باب، اس کی 6-9 آیت میں یسوع مسیح جب آتا ہے کہ ان میں تلاش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا. بائبل مقدس میں باغ، تاکستان، کھیت کس کی تصویر ہے؟ خداوند خدا کے لوگوں کی تصویر ہے، دنیا کی تصویر ہے، اور خاص کر تاکستان کیا ہے جی؟ اسرائیل کی تصویر ہے. سو کسی نے اپنے تاکستان میں انجیر کا درخت لگایا. انجیر کا درخت پرانے اور نئے عہد نامہ میں اور آج بھی کیا ہے جی؟ شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، زخموں کو بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور زخموں کو ساتھ کیا ہے جی؟ اسے بہت سی دوسری باتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پرانے عہد نامہ میں آپ نے کہا دیکھا ہوگا کہ یسایہ کو خدا کہتا ہے اس کے بادشاہ کو کہ اس پر کیا کر، اس پٹی کو لگا لے، اور میرا یقین ہے کہ جو پٹی بنائی گئی تھی وہ انجیر کے پتوں کی پٹی تھی، اور یہ کیا تھی؟ زخموں کو، درد کو، اور لگے ہوئے ان تمام کیا ہے جی؟ نقصان دینے والی چیزوں، بیماریوں سے کیا کرتا تھا؟ یہ شفا کا وسیلہ تھا. سو کسی نے اپنے تاکستان میں انجیر کا درخت لگایا جو کہ اسرائیل کی تصویر ہے، اور تاکستان کیا ہے جی؟ اسرائیل ہے. اور انجیر کا درخت کیا تھا جی؟ خوشحالی کی تصویر تھا، برکت کی تصویر تھا، پھلدار زندگی کی تصویر تھا، اس کا ذائقہ بڑا اعلیٰ تھا، وہ جسمانی اور روحانی طور پر کیا تھا جی؟ ایک خوبصورت تصویر تھا. جب میں امریکہ میں تھا، کیلیفورنیا میں گیا وہاں پر کلام سنانے کے لیے، تو ایک مسیحی بہن تھی جن کے گھر میں میں نے چرچ رات گزاری کے اگلے دن چرچ کی عبادت کروائی جائے، ان کے باہر دروازے کے سامنے کیا لگا ہوا تھا جی؟ انجیر کا درخت لگا ہوا تھا، اور ہرنیاں آ کر اس انجیر کو کھاتی تھی، اور میں نے کیا کیا، اس پہ سے کچھ انجیر توڑ کر کھائے، وہ بہت ہی لذیذ تھے. سو یہاں پر کیا ہے جی؟ انجیر کیا تھی؟ خوشحالی کی، برکات کی، فراوانی کی، بھرپوری کی تصویر ہے. اور کیا لکھا؟ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ 3 سال باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پایا، اسے کاٹ ڈال. یہ زمین کو بھی کیوں گھیرے روکے ہوئے ہیں، روکے رہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، اس سال تو تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے ارد کھالا کھودوں، کھاد کروں، اور آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اسے اس کے بعد کیا کیا جائے گا جی؟ کاٹ ڈالا جائے گا. یہاں پر وہ ٹائم ہے جب یسوع مسیح زمین پر آیا. یسوع مسیح نے کتنے سال خدمت کی تھی؟ 3 سال. اس کی پیدائش سے لے کر نبیوں کی نبوت، اور اس کے مرنے اور مصلوب ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے عرصے کو دیکھتے ہیں تو 3 سال. یہاں پر خدا نے اپنے بیٹے کو اسرائیل میں بھیجا کہ ان کو بتائے کہ تم وہ انجیر کا درخت ہو جو تمام قوموں کے لیے شفا، برکت، خوشحالی، گواہی کا باعث تھا. اب میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ تم میں سے میں پھل کو ڈھونڈوں، لیکن وہ پھل نہیں ملا. خدا اسے کاٹنا چاہتا تھا، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے، اے مالک، اے خداوند، ابھی 3 سال کا مجھے وقت دے، اور اگر نہیں پھلا تو ٹھیک ہے، اس کی میں کھاد کروں گا، اس کی میں تمام اس پر محنت کروں گا، اس کی تیاری کروں گا، جانچوں گا کہ اس میں کون سی جنگلی جڑی بوٹی लग गई है, किस किस्म का कीड़ा लगा है, किस किस्म की दवाई करने की जरूरत है, और यीशु मसीह ने रहम के बारे में, तर्स के बारे में, माफी के बारे में, इन मोहब्बत के बारे में, कुर्बानी के बारे में, हर तरह की दवाई लगाकर उस इसराइल के पाकिस्तान को साफ करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रहाई नहीं पाई। और क्या हुआ, 3 साल के बाद यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक क्या होता है जी, मसलूब होता है, मर जाता है, दफन होता है, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठता है, और जाने से पहले उनको कहता है कि अगर तुम फल नहीं लाओगे तो याद रखो वो वक्त आने वाला है, तुम्हें बर्बाद किया जाएगा, शहर का महाज होगा, रूमी आएंगे, और ये है कि जिसे तुमने 48 बरस में बनाया है ये क्या होगी जी, बर्बाद होगी, तुम शहरों में भागोगे, तुम शहर के बाहर जाओगे और तुम्हारे ये हालात होंगे। और 70 ईस्वी में यीशु मसीह के कहे के मुताबिक क्या हुआ, यरूशलम पर हमला हुआ और तबाहो बर्बादी, और उनके हालात ऐसे थे जैसे वहां पर कोई रहता नहीं, उनकी हालत खुदा का बंदा यर्मिया रोते हुए नोवा की किताब में बयान करता है कि वो शहर ऐसे बर्बाद है जैसे नई नई दुल्हन क्या हो गई हो जी, विधवा हो गई हो, बेवा हो गई हो, उसके ऊपर कुछ भी रोने वाला नहीं है, सब क्या है जी, ना उम्मीद है। सो यीशु मसीह पहले बागेदम में ढूंढने आया और उनमें अंजीर के पत्तों में जो पाया तो किसको पाया, आदम और हवा को। दूसरी बार ढूंढने आया तो इसराइल में उसने फल नहीं पाया और उसने कहा मुझे 3 साल दिए जाए। आज वो कलीसिया में भी चलता फिरता है। मकाशवा की किताब को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मकाशवा 2 बाब जब हम उसकी पहली 5 आयात को पढ़ते हैं तो वहां पर इसियो की कलीसिया को खुदा का फरिश्ता लिखते हुए कहता है कि मैं तेरे काम को, तेरी नेकियों को, तेरी मुसीबतों को, तेरे सब बातों को जानता हूं, लेकिन मैं तुझसे एक शिकवा करना चाहता हूं, तुझसे मुझे एक शिकायत है। हम बहुत शिकायतें करते हैं यीशु मसीह से, पादरी साहब ने मेरी गाल नहीं मानी इस करके ले, किसी डीके ने मेरी बात नहीं मानी ले, मेरी पसंद का गीत नहीं गाया ले, मुझे मौका नहीं मिला ए, मैं वक्त पर नहीं आई ए, मैं हदिये का क्या सी दे दिता लेकिन मैं तो सोचिया मैं वड्डी कुर्सी ते पाउण गए ए, शिकायत पर शिकायत करते हैं, मेरा ओदे नाल रिश्ता नहीं ठीक इस करके वो चर्च ना आवे ए, वो मेरे चाचे का मुंडा उन्हें सारू साल नहीं दिता सी इस करके असी इन्हों की खुशी की इबादत आ तुम चले जाओ मैं नहीं जाना है। हम शिकायत पर शिकायत करते हैं, शिकायत पर शिकायत करते हैं। आज यीशु को कलीसिया से शिकायत है, आज यीशु को कलीसिया पर शिकवा है, और कलीसिया के पांव ऊपर जो उसका शिकवा है वो ये नहीं कि तुम टाइम में नहीं आए, वो ये नहीं कहा कि तुम नवे कपड़े नहीं पाए, वो ये नहीं कहता कि तुमने हदिया नहीं दिया, वो ये नहीं कहता तुमने ये नहीं किया। उसका जो हल है वो क्या है, वो कहता है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आज अपनी अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है, मुझसे लेकर बाहर तक दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने बैठे हैं जांचने की जरूरत है कि क्या ही हमने अपनी पहली सी मोहब्बत तो छोड़ नहीं दी। नई नई शादी ते आइसक्रीम, नई नई शादी ते हर शाम वॉक, नई नई शादी ते अपना कहते कि पार्क जा रहे, नई नई शादी ते रिश्तेदारों को मिलन नहीं जा रहे, नई नई शादी ते बुढ़ी का रंग पसंदीदा याद आ, नई नई शादी ते बुढ़ी की जुत्ती का नंबर भी याद आ, नई नई शादी ते बुढ़ी के पसंदीदा पकौड़े भी याद आ, अगली जितों भी जाना पवे लैके आने पेंदे, यह है पहली मोहब्बत। और जब हमारी नई नई पैदाइश होती है, मखसूसियत होती है, चाहे पासबान की हो, डीकन की हो, एल्डर की हो, प्रस्तार की हो, गाने बजाने वाले की हो, सफाई करने वाले की हो, या मुंतजम की हो, या मखसूसियत हो, या फिर हमारी नई पैदाइश हो, हम कहते हैं यीशु मसीह की जय, मैं नए सिरे से पैदा हुआ, मैं यीशु मसीह के चलूंगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते बाद जो भाई भी नजर आया, पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अपनी अपनी जिंदगी में जांचने की जरूरत है कि हमने कहीं पहली सी मोहब्बत छोड़ तो नहीं दी। अगर छोड़ी है तो यीशु मसीह कहता है कि मैं बताना चाहता हूं कि तुमने पर पहली सी मोहब्बत छोड़ी है तो उसकी वजह जानने की जरूरत है। वजह क्या है? बस ख्याल करो कि तू कहां से गिरा है। ख्याल करने की जरूरत है आज की सुबह। तौबा करने की जरूरत है। ख्याल करें पहली बात, तीन बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, मोहब्बत छोड़ी है या नहीं छोड़ी। अगर छोड़ दी है तो आपके लिए यीशु मसीह की तरफ से जो हाल है वो क्या है? कहां पर गिरे थे? क्या तकबर ने, गुस्ताखी ने, किसी को माफ ना करना, किसी का बैठना, किसी का बोलना? कौन सी बात थी जो तुम्हारे गिरने का बायस बनी? शमसून के गिरने का बायस दलाला थी, दाऊद के गिरने का बायस बैतशीबा नहीं बल्कि उसकी अपनी जात थी। वो तो अपने मुंह ध्यान नहा रही थी अपने घर में, शायद दुआ कर रही हो कि मेरा खावंद जंग करने के लिए गया है, यहोवा इस मुल्क के सिपाहियों को महफूज रख। और दाऊद अपनी छत पर फिरते हुए उसको देखता है और उसकी नीयत बदल गई। दाऊद को गिराने के लिए जिसने जाति जूलियट को गिराया था, जिसे कोई नहीं गिरा सकता था, उसने उस जाति जूलियट को एक पत्थर से गिरा दिया। और जिस दाऊद के बारे में मशहूर हुआ था कि सौल ने हजारों को मारा और दाऊद ने 10,000 को, वो क्या करता है? अपने आप ही में अपनी कमजोरी में गिर जाता है। आज हमें अपनी अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है, हमारी कमजोरी कौन सी है? क्या झूठ हमें गिराता है? चुगली हमें गिराती है? हसद हमें गिराता है? तकब्बुर हमें गिराता है? नाफरमानी हमें गिराती है? या बेईमानी या लापरवाही? कौन सी बात है जो हमें गिराती है? हमें ख्याल करने की जरूरत है। कहीं दिखावा तो नहीं, फरेब तो नहीं? यहां पर कुछ और बाहर कुछ और, बीवी के साथ कुछ और कलीसिया के साथ कुछ और। हमें अपनी अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। इसमें मैं शामिल हूं, पादरी शफीक शामिल है, एल्डर यूनुस शामिल है, एल्डर क्रिस शामिल है, टीचर शामिल है, एल्डर रजेश शामिल है, डीकन अदील शामिल है, आप सब शामिल है। हमें अपनी अपनी जात में झांकने की जरूरत है। हमें कौन सी चीज गिराती है और कहां पर हम गिरे हैं? दाऊद को उसकी जात में गिरा दिया, समसून को दलाइला ने गिरा दिया, पत्रस को छोटे छोटे इम्तहानों ने मुनकर बना दिया। हम किस किस बात से मुनकर बनते हैं? इसके लिए मुझे लिस्ट देने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी जात में देखिए। और यीशु मसीह कहता है, अगर गिरे हो तो तौबा करो और पहले की तरह काम करो, और अगर तुम तौबा ना करोगे तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। खुदा कहता है कि इस दरख्त को हटा दिया जाए, इस बाग को खत्म कर दिया जाए। यीशु कहता है, नहीं, 3 साल और दे दे, मैं इसकी क्यारी करूंगा, मैं इस पर मेहनत करूंगा, मैं इसकी खाद करूंगा, मैं इसकी देखभाल करूंगा और मुझे यकीन है कि ये फल लाएगा। आप में से हर एक पर जब हम पर खुदा निगाह करता है, वो कहता है कि ए बंदे मैं घर ही ले जाना, इस बंदे का काम इस दुनिया में खत्म है, ये मेरे लिए कोई फल नहीं ला रहा। तो यीशु कहता है, नहीं खुदा, 3 साल और दे दे। इसलिए हमें अपनी अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है। अगर हम रियाकारी की, शरारत की और ठट्ठाबाजी की राह पर चलते रहेंगे और बर्गश्ता होकर खुदा की तरफ से इतनी दूर चले जाएंगे कि उसकी आवाज को भी नहीं सुनेंगे, उसके हाथ को भी नहीं देखेंगे, उसके कलाम पर भी नहीं गौर करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा? इस बंदे को जो मेरे नाम से कहलाता है, इस बंदी को जो मेरे नाम से कहलाती है, मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा, क्योंकि ये वो दरख्त है जो फल नहीं ला रहा, इसलिए इसे इससे पहले के जलाया जाए, इसे उखाड़ कर मैं अपने घर में ले जाऊंगा। यानी कि वो ईमानदारों को उनकी मौत या उम्र जो मियाद है उससे पहले क्या करता है जी? बुला लेता है। आए हम खुदा के जुड़ चुके और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारी जिंदगी में फल को रोकने वाली कौन सी जहरीली सोचे हैं, कौन से झूठ हैं, कौन सा फरेब है जो अबलीस ने बोया है, किसी और ने नहीं, किसी और पर इल्जाम मत लगाएं, अगर लगाना है तो अपने इस पर इल्जाम लगाएं, अगर लगाना है तो अपने ऊपर इल्जाम लगाएं कि आपने उससे फरेब खाया है। आदम और हवा ना बने, हवा ने मैनू कहा सी, आदम ने मैनू कहा सी, आदम ने कहा, हवा ने मैनू कहा, हवा ने कहा, मैनू सप ने कहा, इस तरह फिर कहते हैं जी ब्लेम और गेम शुरू होती है एक दूसरे पर इल्जाम तराश की। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से जो बीज बोया गया खुदा खुदा तो यहां पर चलता फिरता है हमारी जिंदगी में जो भी जहरीली बातें हैं, सोच हैं, ख्याल हैं, उन पर अपने कलाम के वसीला से खाद कर, तैयारी कर, ताकि हम सब खुदा खुदा फलदार बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन।